आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी का आज की इस क्लास में हम बहुत 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 स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप बचपन से ही ईश्वरीय सेवाओं में हैं, आपको ये ईश्वरीय ज्ञान 1964 में मिला। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की, आपने एमएससी और बीएड किया, आपने शिक्षा विभाग में अपने लेक्चर भी दिए हैं। आपको आध्यात्मिकता व मानव सेवा में शुरू से ही रुचि रही है और इसी आकर्षण से आपने अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। आपने अनेक विषयों पर अपने वक्तित्व दिए हैं, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, सेल्फ मैनेजमेंट, ऐसे कई विषयों पर आपके कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं और आप अपनी वाणी से अनेक आत्माओं को समय प्रति समय लाभान्वित करते रहते हैं। आपको अनेक शैक्षणिक संस्थाओं से सम्मान भी प्राप्त है। वर्तमान समय आप हांसी व हांसी से संबंधित सेवा केंद्र के डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप जूरिस्ट विंग की पंजाब जोन की जोनल कोऑर्डिनेटर भी है। तो आज हम आदरणीय लक्ष्मी दीदी से बहुत सुंदर विषय पर क्लास सुनेंगे, संगम युग के अनमोल खजाने। इस विषय पर अभी हम सुनेंगे आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के बहुत प्यारे बच्चे, बहुत ही सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें संगम युग पर सर्वशक्तिवान बाबा से अनेका अनेक खजाने मिले हैं। सचमुच में ये संगम का समय कितना महान है कि जिसके अंदर स्वयं परमात्मा से हम बच्चों का मिलन होता है। केवल मिलन ही नहीं होता, लेकिन बाबा हम बच्चों को बहुत सारी शक्तियों से, गुणों से इतना भरपूर कर देते हैं कि पूरे कल्प के अंदर हम आत्माएं सदा ही भरपूर रहते हैं। सतयुग और त्रेता में तो संपूर्ण प्राप्ति है ही, लेकिन द्वापर और कलयुग में भी बाबा के बच्चों को कोई कमी नहीं आती। आज इस अंतिम जीवन के अंदर भी हर बाबा का बच्चा बड़े आराम से, सहज भाव से अपने जीवन को जी रहा है। तो बाबा से इस समय हमें कौन कौन से विशेष खजाने मिलते हैं जिससे बाबा हम सबकी पालना करते हैं। भक्त आत्माएं केवल गायन करती हैं कि भगवान पालनहार है, लेकिन सही अर्थों में उसकी पालना क्या है? सवेरे उठने से लेकर के रात को सोने तक बाबा कितने खजानों से, कितनी शक्तियों से हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं सुबह सुबह उठने से लेकर के। तो कुछ ऐसे अमूल्य खजाने हैं जो हमें वरदान के रूप में प्यारे बाबा से मिलते हैं। उसमें भी अगर हम देखें तो कौन कौन से विशेष खजाने मिले हैं हमें। एक खजाना है समय का खजाना। ये संगम युग का समय, इसका एक एक सेकंड कितनी कीमती है कि एक एक सेकंड में हम कितनी कमाई कर सकते हैं, पद्मों की कमाई कर सकते हैं। ये समय ऐसा है जिसमें बोया हुआ बीज अनेक जन्मों तक फल देता है। ये वो समय है जबकि भगवान स्वयं हमारे द्वार पर खड़ा है, हमारी अनेक जन्मों की तकदीर बनाने के लिए। इसलिए संगम युग पर बुद्धिवान और समझदार उसे कहेंगे जो अपने इस कीमती समय की एक सेकंड को भी वेस्ट ना करे, कदम कदम पे इसकी संभाल करे। बाबा ने हम सबको कहा है बच्चे, संगम युग का एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। तो मेरा समय कितना कीमती है, बाबा ने तो इस समय को इतना वैल्यूएबल रूप में हमें दिया है, लेकिन हमें ये देखना है कि मैं अपना हर दिन हर सेकंड कैसे बिता रहा हूं। हमें अपने इस अनमोल खजाने की बहुत बहुत संभाल करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि इतना कीमती समय, वरदानी समय, और ऐसे ही साधारण सोच में जा रहा है, साधारण संकल्पों में जा रहा है, एक दिन दो दिन दस दिन, हम अपने समय का विशेष चार्ट बनाएं, क्योंकि हमारा एक एक सेकंड बहुत बहुत अनमोल है। साधारण चिंतन में, व्यर्थ की बातों में, दुर्भावनाओं में, ईर्षा द्वेष में ये समय न चला जाए, क्योंकि इस जीवन का जो एक सेकंड भी हमने वेस्ट किया वो एक सेकंड नहीं गया, बहुत लंबे समय की प्राप्ति पर हमने खुद ही लकीर लगा दी। उसके साथ साथ बाबा ने हम सबको समझाया, ज्ञान दिया है कि बच्चे जो आपका एक एक संकल्प है वो बहुत बड़ा खजाना है। कैसे कि हमारा जो एक एक संकल्प है वो बहुत कुछ रचता है। हमारे संकल्पों में क्रिएटिव एनर्जी है, हर संकल्प कुछ रच रहा है, हर संकल्प रचना कर रहा है। अगर हमारे संकल्प प्योर हैं, पॉजिटिव हैं, पावरफुल हैं, तो हमारे अनेक जन्मों की रचना वैसी ही हो रही है। और अगर हमारे संकल्प व्यर्थ हैं तो हम अपने लिए वैसी ही रचना कर रहे हैं। हर संकल्प का महत्व है। जैसे कहा जाता ब्रह्मा जी को संकल्प उठा और सृष्टि रच दी, तो ब्रह्मा के पुत्र और पुत्रियां हम सभी ब्राह्मण और ब्राह्मणियां जो संकल्प रचते हैं उससे हमारी सृष्टि का निर्माण होता है। प्रतिदिन हम जो संकल्प रचते हैं पूरे कल्प की हर जन्म की हमारी रचना हो रही है। ये सोच करके हर संकल्प उठाना है। जिनके संकल्पों में बहुत श्रेष्ठता है, समर्थ संकल्प हैं, बिल्कुल निश्चिंतता का भाव है, पवित्र संकल्प हैं, तो वो अपने 84 जन्मों के अंदर बिल्कुल निश्चिंत, सदा प्रसन्न चित, सदा हर्षित रहेंगे। और जो आत्माएं इस समय पर भगवान से मिलन हुआ उससे इतने वरदान और शक्तियां मिल रही हैं, और फिर भी अपने संकल्प विकल्पों की जाल बुन करके उसके अंदर ही उलझे रहते हैं, डायरेक्ट ईश्वर से मिलन और फिर भी अपने ही संकल्पों की रचना में उलझे हुए हैं, अगर इस जीवन में बिल्कुल चिंताओं से मुक्त नहीं हुए, तनाव से मुक्त नहीं हुए, तो 84 जन्मों में कैसे होंगे? क्योंकि हमारे इस जीवन की छवि, इस जीवन का चित्र हर जन्म में दिखाई देगा। इसलिए हमें अपने आप के अंदर झांकना है कि मेरा ये संगम युगी जीवन हर दिन बिल्कुल लाइट है, प्रसन्न चित है, आनंदमय है, क्योंकि बाबा मेरे साथ है और ये समय मेरे लिए बहुत कल्याणकारी है। इतना बड़ा सहयोग है मुझे, एक तरफ सर्वशक्तिवान बाबा, उसका वरदानी हाथ सिर पर है, दूसरी तरफ समय इतना कल्याणकारी है, अगर फिर भी हम बिल्कुल आनंदित ना हुए, बिल्कुल निश्चिंत ना हुए, तो कौन सा जन्म ऐसा आएगा जिसमें हम आनंद में रहेंगे? अपने आप से पूछना है। जो इस संगम युगी जीवन के अंदर संतुष्ट नहीं, प्रसन्न चित नहीं, खुश नहीं है, तो 84 जन्मों में वही छवि देखने में आएगी। इसलिए अपने आप से पक्का कर लें कि इस संगम युगी जीवन में अपने जीवन को बिल्कुल सहज भाव से जीना है। दूसरों को नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल लाइट रहना है, हर्षित रहना है, संतुष्ट रहना है, और दूसरी आत्माओं को भी अपनी स्थिति के द्वारा सहयोग देना है। तो अपने एक एक संकल्प पर हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जो कुछ हम सोच रहे हैं उससे हमारा संसार, मेरा संसार, पूरे कल्प का संसार बन रहा है। अगर मैंने एक घंटा या एक दिन बोझिल होकर के बिताया, दुखी होकर के बिताया, तो वो एक घंटा नहीं है, वो बहुत लंबे समय के लिए, हर जन्म के लिए अपने आप को बोझिल बनाया है। इसलिए अपने संकल्पों के खजाने पर बाबा ने इसके लिए खास कहा है कि बच्चे, संकल्प का धन सबसे बड़ा धन है, उसको मुझे बचाना है, व्यर्थ जाने से बचाना है। उसके साथ साथ बाबा ने हमें और कौन सा खजाना दिया है? पुण्य जमा करने का खजाना। ये संगम युग ही है जिसमें हम जितना चाहें उतना अपना पुण्य जमा कर सकते हैं, जितना चाहें। और वो पुण्य जमा करने के लिए बाबा ने हमें क्या क्या दिया है? बाबा कहते, ये तन जो पुराना है, पतित है, ये मन जो जन्म जन्म का पापी है, धन जो नाशवान है, उन सबको सफल करके, उनकी इकोनॉमी करके, व्यर्थ जाने से बचा करके हम बहुत पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। अपने जीवन के अंदर हमें छोटे छोटे पुण्य जमा करने हैं, छोटे छोटे भी। किसी को अपने बोल के द्वारा सुख देना, ये भी पुण्य है। किसी का भगवान से मिलन करा देना, ये भी पुण्य है। किसी को दुआएं देना, मनसा से अच्छे शुभ भावनाएं रखना, ये भी सूक्ष्म पुण्य कर्म है। और थोड़ा थोड़ा पुण्य जमा करते करते भी हम बहुत बड़े पुण्य के भागी बन सकते हैं। और बाबा ने हम बच्चों को कर्मों की बहुत गहन गति समझाई है, बहुत गहन। सिर्फ पाप कर्म वही नहीं है जो मोटे मोटे पाप हैं, लेकिन हमारे कारण किसी आत्मा के संकल्प चले, व्यर्थ चला, या उसके मन को ठेस पहुंची, तो ये भी सूक्ष्म पाप है। तो संगम युग पर हमें हर पल हर घड़ी पुण्य का खाता जमा करना है, और उसके लिए बाबा ने हमें बहुत सारे साधन दिए हैं। अगर किसी के पास धन नहीं है तो तन से सेवा कर लो, मन से सेवा कर लो, अपनी शुभ भावनाओं का सहयोग दे दो। बाबा के कार्य में शुभ भावनाओं का सहयोग, ये भी पुण्य कर्म है। और ये पुण्य कर्म हम जितना थोड़ा थोड़ा भी जमा करते जाएंगे तो उतना हमारा, हमारे जीवन के अंदर एक हल्कापन आएगा, एक खुशी आएगी। कई बार हम बहुत कुछ कर लेते हैं, पुरुषार्थ ठीक कर रहे हैं, मुरली भी सुनते हैं, योग भी लगाते हैं, पर फिर भी जीवन में कुछ भारीपन लगता है, खुशी नहीं रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सूक्ष्म पाप हमसे हो रहा है। किसी भी आत्मा के लिए एक भी नेगेटिव संकल्प जब तक हमारे मन में है तब तक हम सहज योगी नहीं बन सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत बड़ा खजाना बाबा ने जो हमें दिया है वो है खुशी का खजाना। इस संगम युगी जीवन में सदा प्रसन्न चित रहना है, खुश रहना है, अपने घर के वातावरण को भी बहुत खुशनुमा बनाना है, एकदम शांति का वातावरण, प्रेम का वातावरण, शांति प्रेम और खुशी जिस घर के अंदर है तो समझो हम बाबा के बच्चों ने हैं, माताएं हैं, तो अपने घर घर को जैसे मंदिर बनाना है। लेकिन घर घर को मंदिर कब बनाएंगे, जब हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा दिन घर का वायुमंडल बिल्कुल शांत रहे। और उसके लिए हमें एक धारणा पक्की करनी है, अगर हमें अपने घर के वातावरण को शांति का वातावरण बनाना है तो केवल एक बात पक्की करनी है कि हमें बातों को बढ़ाना नहीं है। घर की शांति तभी भंग होती है, सास ने कुछ कह दिया उसको बढ़ा चढ़ा के सोच लिया, बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया, बहू ने कुछ कहा, पति ने कुछ कहा, या बच्चे ने कुछ भी कहा, कुछ भी किया, उन बातों को हमें छोटा करना है। और बातों को छोटा करने का तरीका है कि हम सुबह से शाम तक ये कोशिश करें जीवन के अंदर कि हमें ज्यादा से ज्यादा फुल स्टॉप लगाना है, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, तो जैसे कि हम बातों को बढ़ाते हैं, वातावरण को भारी कर देते हैं, खुद भी बोझिल होते हैं और सारे परिवार के वातावरण को भी भारी कर देते हैं, और इतना जो अनमोल खुशी का खजाना है वो गायब हो जाता है। इसलिए बिल्कुल शांत चित हर रोज ये नियम बना लें कि हर रोज बाबा का आवाहन करना है, शांति के सागर की, शांति की किरणें अपने पूरे घर के अंदर फैलानी है, एक एक कोने कोने के अंदर हर आत्मा को वो शांति का दान देना है। तो जहां शांति होगी, चित चैन में होगा, वहां खुशी हमारी बनी रहेगी। और साथ साथ अपनी खुशी को बनाए रखने के लिए हमें दूसरा इस बात का ध्यान रखना है कि बातों को पकड़ के नहीं रखना है। बातों के संबंध में हम दो भूलें करते हैं, एक बातों को सोच सोच के और वर्णन करके बढ़ाते हैं और दूसरा बातों को पकड़ के रखते हैं। जब हमने अपने चित्त के अंदर किसी भी बात को पकड़ लिया तो हमारे मन के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। जैसे हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, हार्ट अटैक आता है। लेकिन जब हमने कोई गांठ मन के अंदर बना ली, किसी बात को चित्त के अंदर पकड़ लिया, ये व्यक्ति ऐसा है, ये वैसा है, तो यहां मन के अंदर भी एक ब्लॉकेज हो गई और जो सर्कुलेशन है वो कौन सा बंद हो गया। आत्मा के सात गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। और जितना हम आत्म चिंतन करते हैं, शुद्ध चिंतन करते हैं, तो सुख शांति का फ्लो सारा दिन चलता रहता है। वो शांति और प्रेम का फ्लो हमारे शरीर में भी चलता है, हमारे संबंधों में भी चलता है, घर के वातावरण में भी चलता है। और जैसे ही हमने किसी बात को पकड़ लिया मन के अंदर, तो वो सुख शांति का फ्लो बंद हो जाता है। अभी हम कुछ क्षण के लिए आत्मस्मृति में बैठ करके शांति का वाइब्रेशन, सुख और प्रेम के वाइब्रेशन फैलाएंगे। इस प्रकार से खुशी के खजाने को कायम रखने के लिए हमें अपने मन के अंदर कोई भी कड़वी बातें, बीती बातें, किसी का अवगुण, किसी के बुरा व्यवहार, उससे संबंधित जो भी गांठ है मन के अंदर, उसे बिल्कुल खोलते जाना है। और उसके लिए बाबा ने हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई है कि बच्चे, अगर किसी ने कुछ गलत किया भी है तो क्षमा भाव रखो, क्षमा कर दो, ये सबसे बड़ा दान है। और ये हम उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर रहे, लेकिन अपने आप को क्षमा कर रहे हैं। जैसे ही हमने किसी को क्षमा कर दिया, भूल गए, चित्त से उस बात को हटा दिया, तो हमारा अपना समय और हमारी अपनी शक्ति व्यर्थ जाने से बच जाती है। इसलिए संगम युगी जीवन में हमें हर दिन को, हर पल को एंजॉय करना है, उसका आनंद लेना है। और आनंद लेने के लिए हमें अपने मन के अंदर बिल्कुल सहज भाव, सरलता अपने जीवन के अंदर लानी है। इजी नेचर, प्रॉब्लम नेचर नहीं, टकराने वाले नहीं बनना। क्योंकि बाबा ने एक बार ये बहुत सुंदर बात सुनाई थी, सूर्यवंशी आत्माओं का और चंद्रवंशी आत्माओं में क्या अंतर होगा। जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो समाधान स्वरूप होंगी, और जो चंद्रवंश में उतरने वाली आत्माएं हैं वो समस्या स्वरूप होंगी। समाधान स्वरूप माना हर बात को बिंदी लगा के बिल्कुल सरल हो जाना, समाधान। वैसे भी हम देखते हैं सतयुग का जो सिंबल है वो क्या है, श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाता है, रास करता है, नाचता है, जबकि दुनिया वालों के हिसाब से जो उसका श्री कृष्ण का जन्म से लेकर के जो जीवन दिखाया है तो उसमें कुछ समस्याएं दिखाई है। जन्मते ही कभी पूतना आ गई, कभी जो है ना अकासुर आ गया, कभी बकासुर आ गया, कभी जो है ना वो सर्प है पांच मुख वाला, लेकिन हर परिस्थिति से निपट करके वो फिर नाचने लगा, सर्प के ऊपर भी नाच रहा है, पूतना के ऊपर भी डांस कर रहा है। तो ये किस चीज का सूचक है कि जो सूर्य वंश में आने वाली आत्माएं हैं, बातें तो उनके सामने भी आएंगी, समस्याएं तो उनके सामने भी आएंगी, लेकिन वो किसी भी समस्या में उलझेंगे नहीं। उनकी स्थिति इतनी अच्छी होगी, इतनी ऊंची होगी कि हर समस्या नीचे ही रह जाएगी और वो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। और चंद्रवंशी आत्माओं का चिन्ह है कि वो कहीं ना कहीं टकराव में आएंगे, उलझते रहेंगे, क्यों और क्या, और उसी में अपना समय और शक्ति वेस्ट करते रहेंगे। इसलिए हम सबको सूर्यवंश का लक्ष्य रखना है। सूर्यवंशी माना जो सदा खुशी में नाचते हैं, जो सदा बाबा की मुरली का मंथन करते हैं, मुरली बजाते हैं, जो बिल्कुल इजी हैं अपने जीवन के अंदर। बाबा ने इस पर भी बहुत सुंदर महावाक्य सुनाए हैं अव्यक्त वाणियों में कि जो मेरे बच्चे सरल स्वभाव हैं, इजी नेचर होंगे, उनकी हर समस्या भी इजी हो जाएगी। जिनका स्वभाव सरल है उनके संबंध भी सबके साथ इजी होंगे। जिनका स्वभाव सरल है उनके कर्म भोग भी सरलता से चुकतू हो जाएंगे। इसलिए सदा प्रसन्न चित और खुश रहने के लिए अपने नेचर के अंदर सहजता को भरना है, सरलता को भरते जाना है और साथ साथ इस खुशी के खजाने को कायम रखने के लिए बाबा कहते बच्चे घर परिवार के अंदर भी अपने संबंधों को इजी बनाना है तो सबके लिए कुछ अच्छा सोचो, एप्रिशिएट करो, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते और अच्छा बोलते हैं तो वहां संबंधों के अंदर सारा टकराव खत्म हो जाता है और एकदम इजी हो जाते हैं। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक बार एक घर के अंदर एक बहू आती है और जब वो नई शादी करके आती है तो कुछ दिन के बाद ही जो सास है उसका भी स्वभाव थोड़ा गर्म होता है और वो कुछ टोका टाकी करनी शुरू कर देती है और बहू को वो टोकना अच्छा नहीं लगता है तो थोड़े समय के बाद वो अपने पति से शिकायत करती है, वो भी ज्यादा ध्यान नहीं देता है तो वो टेंशन में रहने लगी क्योंकि सास टोका टाकी जरूर करती थी और उसे टोका टाकी पसंद नहीं थी। धीरे धीरे टेंशन बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जो आजकल हम परिवारों के अंदर देखते हैं कि वो बहू अपने मायके चली गई और वहां जाकर के उसने अपने पिताजी को कहा, जो आयुर्वेदिक वैद्य थे उनको कहा कि कोई ऐसा प्रबंध करो, ऐसी दवाई दो जो सास से मेरा पिंड छूट जाए। यानी वो उसका भाव यही था कि कोई ऐसा पॉइजन दे दो जो उसका काम पूरा हो जाए। तो उसके बाप ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि माता पिता तो यही बच्चों को समझाएंगे। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, यदि ऐसा कर दिया तो तुम भी जेल में जाओगी और मैं भी जेल में जाऊंगा। बहुत समझाया, वो नहीं मानी। वो पिता बहुत समझदार था उसका, आखिर उसने उसका मन रखने के लिए कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बहुत धीमा सा जहर, स्लो पॉइजन देता हूँ, कुछ पुड़िया बना के देता हूँ, तुम्हें 3 मास तक ये दवाई अपनी सास को देनी है, लेकिन इसके साथ परहेज है। परहेज ये है कि 3 मास तक तुम उसकी खूब अच्छी तरह सेवा करो, खूब प्यार से बोलो, उसकी सेवा करो, समय पर भोजन दो, सब कुछ कर। कहा ये तो मैं कर लूंगी, 3 ही तो मास की बात है। वो ले गई और रोज जाकर के उसकी सब्जी के अंदर वो मिक्स कर देती थी और बड़े प्यार से जो है ना उसके साथ व्यवहार करती थी, माताजी, समय पर भोजन, समय पर चाय पानी, सब कुछ। अब सास ने देखा कि मेरी बहू के अंदर तो बदलाव आना शुरू हो गया, ये अच्छी होने लगी, तो उसने टोका टाकी थोड़ी कम कर दी और जैसे जैसे उसका टोकना बंद हुआ तो बहू का भी जो प्यार था वो थोड़ा बढ़ने लगा। जब करीबन 2 मास बीत गए तो देखा कि उनके व्यवहार के अंदर बहुत बदलाव आ गया। बहू को लगने लगा कि ये सास तो बहुत अच्छी, अब तो मेरी माँ जैसी है, क्योंकि बड़े प्यार से वो प्रशंसा करती थी, पड़ोसियों को भी सुनाती थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। और सास को भी लगने लगा कि बहू अब तो चुप रहती है, किसी बात का जवाब ही नहीं देती, तो लोगों को कहना शुरू कर दिया कि मेरे घर में तो देवी है। तो इस तरह से एक दूसरे की भावनाओं में अंतर पड़ना शुरू हो गया और बहू को एक दिन ख्याल आया कि अब तो 2.5 मास हो गए, 15 दिन ही बाकी हैं और अब तो ये सास जानी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका तो बहुत सुख है, ये सारा दिन घर में रहती है, बड़ा प्यार भी करती है। तो वो फिर गई अपने पिता के पास और कहती है, पिताजी अब कोई ऐसी दवाई दो जिससे जो 2.5 मास पॉइजन का असर हुआ है वो खत्म हो जाए। तो उसने कहा कि पगली, मैंने तो कोई पॉइजन दिया ही नहीं, आपने ताली पहले ही बजा दी है? मैंने तो कोई पॉइजन दिया ही नहीं, वो तो केवल सिंपल कुछ ऐसा राग जैसा था, ये केवल तेरे मन के अंदर जो पॉइजन था वो निकालना था। यानी बहू ने सास की प्रशंसा करनी शुरू कर दी और सास ने बहू की, यहां भावनाएं हैं। जब हमारी एक दूसरे के प्रति भावनाएं अच्छी हो जाती हैं, वहां घर का सारा वातावरण परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए हर आत्मा के प्रति कि ये भी देव कुल की महान आत्मा है, इस भावना से हम सबके साथ व्यवहार में आएंगे तो सचमुच में देखेंगे कि घर के वातावरण में बहुत बदलाव आएगा और जो हमारा खुशी का खजाना है वो बढ़ता ही जाएगा, जीवन के अंदर बढ़ता ही जाएगा। और इससे भी बड़ा एक खजाना है जो बाबा ने हमें सिखाया है, वो है दुआओं का खजाना। सबकी दुआएं लो और सबको दुआएं दो। दुआ जो काम करती है वो काम दवा भी नहीं कर सकती, दवाई नहीं कर सकती है। कई बार हम देखते हैं कि किसी का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चकनाचूर हो गई, लेकिन उस व्यक्ति को एक खरोच भी नहीं आई। यहां दुआएं काम करती हैं। और कई बार हम देखते हैं जरा सा फरस पे फिसल के गिरे, उसी समय ब्रेन डैमेज हो गया। तो इसलिए दुआ जीवन के अंदर बहुत बड़ा काम करती है। और दुआएं मांगने से नहीं मिलती हैं, दुआएं ली जाती हैं। जब हम किसी आत्मा को दिल से सुख पहुंचाएंगे, जब हम किसी आत्मा की निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, बिल्कुल निस्वार्थ होकर के, तो उस आत्मा के दिल से दुआ निकलेगी, दिल से, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। तो इसलिए हमें ये लक्ष्य रखना है कि सबसे दुआएं लेनी है। जितना हम सुख पहुंचाते हैं किसी को भी, और वो भी बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के, उतना दुआएं मिलती हैं। और हमें दुआएं भगवान की लेनी है सबसे पहले। बाबा की दुआएं, बाबा की ब्लेसिंग्स कौन से बच्चों को मिलती हैं? जो उसके आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं, उसकी हर श्रीमत का एक्यूरेट पालन करते हैं। हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं कि श्री कृष्ण जहां साथ था, जैसे दुनिया में उसे ईश्वरीय शक्ति का ही रूप समझ करके, पांडवों के साथ भगवान था, केवल साथ, उसकी दुआओं का हाथ था, कोई शस्त्र नहीं था। अर्जुन ने केवल उसे ही मांगा था, कौरवों ने 18 अक्षौहिणी सेना मांगी थी, लेकिन पांडवों के साथ केवल भगवान, कोई शस्त्र नहीं। ये यादगार किसका है? वास्तव में ये हमारे संगम युगी जीवन का यादगार है। जो बाबा से प्रीत बुद्धि बच्चे हैं, जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं, वो सच्चे पांडव हैं। और जो भगवान के हर इशारे को समझते हैं, हम सब ये जानते हैं कि पांडवों की जीत अगर श्री कृष्ण साथ ना होता तो नहीं हो सकती थी। हर कदम पे उसने डायरेक्शन दिया, खुद हथियार तो नहीं चलाए। अगर उनके साथ वो ना होता, उसकी डायरेक्शन ना होती, तो पांडव कभी भी भीष्म पितामह को नहीं मार सकते थे, द्रोणाचार्य को नहीं मार सकते थे, दुर्योधन को नहीं मार सकते थे, क्योंकि उसके पास भी वो वज्र का शरीर था। लेकिन जहां इशारा दिया ना, भीम को इशारा दिया कि वार कहां करना है, तो बाबा हम बच्चों का सारथी है, वो हमें डायरेक्शन देता है कि बच्चे ये करो और ये ना करो। जितना हम उसके डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, बाबा की मुरलियों में जो श्रीमत के इशारे मिलते हैं, उन इशारों को जितना फॉलो करेंगे, तो हमारी जीत, माया पर जीत निश्चित है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सारथी को साथ रखो। और दूसरी एक बहुत सुंदर चीज, इन खजानों को सेफ रखने के लिए जो बाबा ने हमें दी है वो है साक्षी भाव। इन दो शब्दों को भी हम अगर पक्का कर लें, साथी और साक्षी, तो हम बाबा की पूरी श्रीमत को अपने जीवन में उतार सकते हैं। साथी को हर पल साथ रखें और जीवन के अंदर साक्षी भाव। साक्षी का मतलब क्या है, अक्सर तो हम कहेंगे ना न्यारे होके देखना, लेकिन उस न्यारेपन में भी क्या देखना, इस ड्रामा की हर सीन को, हर परिस्थिति को और हर व्यक्ति के पार्ट को न्यारे होकर देखना। और ड्रामा की एक बहुत जो अनमोल दो तीन चीजें हैं, उनको जीवन में पक्का करना कि ड्रामा का हर सीन निश्चित है। निश्चित है या अनिश्चित है, क्या कहेंगे, निश्चित है। उसे हम तो क्या, भगवान भी नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता ना। तो साक्षी भाव माना निश्चित, ड्रामा के हर सीन को निश्चित रूप से देखना। लेकिन हम करते क्या हैं कि ड्रामा की हर सीन को बदलना चाहते हैं, ड्रामा के हर एक्टर की एक्ट को बदलना चाहते हैं, सारा दिन इस प्रयास में रहते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, बेटे को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, बहू को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, पति को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऑफिस में है तो ऑफिसर को ये करना चाहिए, कर्मचारी को ये करना चाहिए, हर किसी के रोल को बदलने के प्रयास में लगे हुए हैं और वो बदल नहीं सकता। तो हमारा प्रयास सार्थक है या निरर्थक है, और जो निरर्थक प्रयास में सारा दिन लगा रहेगा उसकी खुशी का क्या हाल होगा। जो काम हो ही नहीं सकता, अगर मैं ये कहूं कि इसी समय पर रात हो जाए और तारे निकल आए और मैं यही सोचती रहूं, परिणाम क्या होगा, मेरा समय और शक्ति वेस्ट हो जाएगी। लेकिन जो निश्चित भावी है उसको मैं नहीं बदल सकती। तो हम बहुत सारी एनर्जी, कितने सारे अपने खजाने इस प्रयास में खराब कर देते हैं। हम हर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, हर सीन को बदलना चाहते हैं, और ये काम कभी भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति जैसा है, जो सीन जैसा है, उसे स्वीकार कर लें, उसे निर्दोष रूप से देखें, उसे निश्चित भावी के रूप में देखें और निश्चिंत रहें। निश्चिंत रहें, तब हम अपने समय, श्वास और संकल्पों के खजानों को, अपनी खुशी के खजाने को सेफ रख सकते हैं। साक्षी भाव माना ही जो भी सीन चल रहा है, जो भी एक्ट चल रही है, वही सत्य है, वो निर्दोष है, और जो निर्दोष है उसमें बार बार दोष निकालते निकालते अपने संस्कारों को खराब कर लेते हैं। इसलिए हमें आनंद में रहना है, खुशी में रहना है, तो सारा दिन एंजॉय करो, हर एक के रोल को भी एंजॉय करो, हर आत्मा के रोल को, कि ये इसका निश्चित पार्ट है इस आत्मा का। इसका मतलब ये नहीं है कि घर के अंदर कोई बच्चा गलत कुछ कर रहा है तो उस गलत को ही देख देख के हम एंजॉय करें, ये मतलब नहीं। उसे जहां उचित है मार्गदर्शन दें, लेकिन फिर भी वो चेंज नहीं होते कोई भी पार्टधारी, तो अपने मन की स्थिति को खराब न करें और ये सोच के ही चलें कि इस आत्मा का भी निश्चित पार्ट है। क्योंकि हर आत्मा जो हमारे परिवार में है, घर में है, चाहे वो एक छोटे बच्चे के रूप में भी है, उसके साथ भी पूर्व जन्मों का बहुत सारा अकाउंट है, और वो अकाउंट हमारे साथ सेटल करने वो आत्मा आई है। इस सृष्टि नाटक की ये अंतिम सीन चल रही है, अंतिम है ना नाटक की सीन, और इस अंतिम सीन के अंदर हमारे सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं, सब आत्माओं के साथ। कई आत्माएं कुछ 8, 10, 20 जन्म पूर्व के भी जो हिसाब हैं, वो अपने खाते चुकतू करने आएंगी, खाते चुकतू करने आएंगी। कुछ आत्माएं हमें इस जीवन की राह में ऐसी मिलेंगी जो हमें बहुत सहयोग देंगी, सुखदायी होंगी, और कुछ आत्माएं ऐसी भी मिलेंगी जो कदम कदम पे हमारे काम में रुकावट डालेंगी, हमारे लिए समस्याएं पैदा करेंगी, लेकिन वो सब भी दोषी हैं या नहीं? नहीं है, क्योंकि जो आत्मा मुझे कुछ कष्ट दे रही है, किसी काम में रुकावट डाल रही है, उसका भी किसी न किसी जन्म का मेरा हिसाब किताब है, और ये लास्ट जीवन और लास्ट समय है, तो वो आत्मा अपना हिसाब चुकतू करने वो भी आएगी। और जिन आत्माओं को हमने सुख दिया है वो हमारे कार्यों में सहयोग करने भी आएंगी। इसलिए दोनों ही आत्माओं को हमें सहज भाव से लेना है। अगर हम दुख देने वालों के लिए कुछ गलत सोचने लगे, उन्हें बददुआएं देने लगे, तो क्या होगा परिणाम? कि पिछला खाता तो चुकतू हो जाएगा, लेकिन एक नया खाता बनना शुरू हो जाएगा, और फिर वो किसे चुकतू करना पड़ेगा? वो मुझे ही चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए इस अंतिम समय के अंदर हम सबके साथ सहज भाव से चलें, किसी के प्रति भी ना तो बददुआ ना दोष दृष्टि, और बड़े सहज रूप से स्वीकार कर लें कि कोई बात नहीं, ये आत्मा जितना मुझे कुछ ऐसा कर रही है ना, ये कोई मेरा सारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो इस तरह से हम सहज भाव से उसे चुकतू करेंगे। साथ साथ बाबा ने हमें गुणों और शक्तियों का खजाना भी दिया है, तो शक्ति का जो खजाना है उसके लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। हम सर्वशक्तिवान की संतान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और इतना शक्ति का स्टॉक जमा करना है कि अंत समय में हमारे सामने कमजोर आत्माओं की, दुखी अशांत आत्माओं की लाइन लगेगी, उन्हें भी शक्ति देनी है। अपने 84 जन्मों के अंदर मैं आत्मा शक्ति से भरपूर रहूं, इतनी अपनी बैटरी भी चार्ज करनी है। तो वो शक्तियों का जो खजाना है वो बाबा की याद से जमा भी करना है। इतना प्यार से, इतनी भावना से बाबा को याद करना है, हर रोज शक्ति भरनी भी है। लेकिन दूसरा ध्यान ये रखना है कि एक तरफ हम योग लगा के शक्ति जमा करें और दूसरी तरफ वो शक्ति लीकेज होती रहे, लीकेज होती रहे। तो टोटल परिणाम क्या होगा कि हम जहां थे वहीं रहेंगे। कुछ भाई बहनों को जीवन में ऐसा लगता है कि जीवन में ज्ञान की आयु तो बढ़ गई, हम 10 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने हो गए, 25 साल पुराने हो गए, लेकिन जो मन की स्थिति है वो आज भी वही है जो 20 साल पहले थी। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ज्ञान योग के चप्पू चल रहे हैं। हम रोज मुरली सुनते हैं, हम रोज क्लास करते हैं, हम सेवा भी करते हैं, लेकिन लीकेज कितनी हो रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। और इसलिए शक्ति का जो स्टॉक है वो जमा नहीं होता है। मन की स्थिति वही साधारण है, खुशी नहीं है, बोल साधारण है, व्यवहार साधारण है, क्योंकि बहुत सारी जो लीकेज है उसकी तरफ अटेंशन नहीं है। तो हमें शक्तियों का खजाना अगर अपने जीवन में भरपूर करना है तो अपनी याद के चार्ट को भी बढ़ाना है। शक्ति जमा होती रहे होती रहे। थोड़ी थोड़ी सेविंग भी छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, तो कितनी सेविंग हो जाती है। तो पूरे दिन भर के अंदर अटेंशन रखना है, चलो 5 मिनट भी खाली है तो मैं बाबा को याद करूं। थोड़ी थोड़ी शक्ति जमा करते करते शक्ति का स्टॉक बढ़ता जाएगा। और दूसरी तरफ ये ध्यान रखना है कि मेरी शक्ति थोड़ी सी भी पर चिंतन में, पर दर्शन में, दुर्भावनाओं में, ईर्ष्या द्वेष में, कई बार पता ही नहीं चलता है, 2 मास, 6 मास, 2 साल जिसके प्रति ईर्ष्या है वो चली रही है अंदर में, माना वो लीकेज, वो छिद्र बना हुआ है, शक्ति इकट्ठी होती ही नहीं। तो किसी आत्मा के प्रति भी ईर्ष्या भाव नहीं, द्वेष भाव नहीं। जब ये अपने मन के अंदर पक्का करेंगे, लीकेज को बंद करेंगे, तो हमारा शक्तियों का जो स्टॉक है वो बढ़ता जाएगा। और जितनी हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी उतनी माया कमजोर होती जाएगी। माया क्या चीज है वास्तव में? हम माया माया बोलते हैं ना, माया क्या चीज है? ये एक बड़ा संतुलन है, जैसे वो बच्चे खेल करते हैं ना, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक ऊपर गया तो दूसरा नीचे गया। तो जितनी हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ेंगी माया की शक्ति क्षीण होती जाएगी। अगर हमारी शक्ति 20% तो माया की शक्ति 80% होगी। अगर हमारी 50% शक्ति बनी है तो माया की भी 50, और जब हमारी 80-90 हो जाएगी तो माया की शक्ति कम होती जाएगी। तो शक्ति का स्टॉक भरने से ये फायदा होगा कि जो गलत प्रभाव है जिसको हम माया कहते हैं वो कमजोर पड़ता जाएगा। पुराने स्वभाव संस्कार उनका शुद्धिकरण हो जाएगा जितनी शक्ति का स्टॉक जमा होगा। और ये शक्ति पूरा कल्प हमें काम देगी। हमारे जो पूज्य स्वरूप है सत्युग त्रेता में, उसमें तो हम होंगे ही शक्तिशाली, लेकिन द्वापर युग से जो हमारी मंदिरों में प्रतिमाएं बनेंगी है? उसके उससे भी जो भगत आत्माएं हैं, आज दिन तक भी देखो किससे शक्ति मांग रहे हैं। अभी अभी हम नवरात्रे करके आए हैं, शक्ति किससे मांग रहे हैं, और वो शक्तियां कौन है? वो शिव की शक्तियां हम सब आत्माएं हैं। हमने इतनी शक्ति जमा की है जो लाखों करोड़ों को शक्ति दे सके। तो ये खजाना भी संगम युग पर बहुत बड़ा खजाना है जो पूरे कल्प में हमें श्रेष्ठ बनाएगा, हमें निर्भय बनाएगा, हमें पूजनीय बनाएगा। तो अपने इस खजाने से भी हमें भरपूर रहना है। तो इस प्रकार से सचमुच में विचार करें, हम कितने भाग्यवान हैं जो भगवान ने इतने इतने अनमोल खजाने दिए हैं कि जो खजाने 5000 वर्ष तक हमें संपन्न रखेंगे, हमें प्रसन्न चित रखेंगे और हमारे द्वारा अनेकों का भी कल्याण कराएंगे। तो हमें इस संगम युग पर समझदार बुद्धिवान उसी को कहेंगे जो अपने इन खजानों की संभाल करता है और बाकी सब चीजों से अपने मन बुद्धि को फारिग रखता है। क्योंकि इस समय का बोया हुआ बीज, इस समय के किए हुए कर्म बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं। इसलिए हमें अपने हर खजाने की बहुत बहुत संभाल करनी है। ओम शांति।